हम सभी ने आज की मुरली सुनी, सभी को याद होगा क्या कहा बाबा ने आज, विचार सागर मंथन करो तो क्या फायदा होगा। विचार सागर मंथन करने से क्या फायदा होगा, सारा दिन बुद्धि में ज्ञान टपकता रहेगा। तो विचार सागर मंथन, जितना जितना हम ज्ञान का चिंतन मंथन करेंगे उतना हमारा बुद्धि ज्ञान रत्नों से भरपूर रहेगा, हम व्यर्थ से मुक्त रहेंगे, योग हमारा सहज हो जाएगा। इसलिए ज्ञान का विचार सागर मंथन करना बहुत बहुत जरूरी है। तो अभी हम एक पॉइंट लेकर के कुछ विचार सागर मंथन करेंगे, और ऐसे ही आप रोज, जैसे आज बाबा ने कहा तुम बहुत बड़े आदमी हो, कहा, अब इसके ऊपर आप मंथन करें। कैसे करेंगे मंथन, जैसे आपको कोई बोल दे तुम तो पागल हो, तो उसका मंथन चलता है ना अंदर में, इसने मुझे पागल बोला, चार लोगों के बीच में बोला, मैं पागल दिखता हूं क्या। अब ऐसे भगवान ने कहा तुम बड़े आदमी हो, अब मंथन करो इसका। किसने कहा, स्वयं भगवान ने कहा तुम बड़े आदमी हो, 500 लोगों के बीच में कहा तुम बड़े आदमी हो, मैं कोई अपने आप को खुश करने के लिए नहीं सोच रहा हूं, लेकिन भगवान ने कहा है ना बड़े आदमी। तो बड़े आदमी कैसे होते हैं, अब अपने आप में सोचो, जो बड़े आदमी होते हैं, बड़े आदमी का बड़प्पन क्या होता है। आप अगर नहीं समझ में आता है तो लौकिक दुनिया के हिसाब से सामने ले आओ, एक लौकिक दुनिया में जो बड़े आदमी होते हैं वो किस आधार से उनको कहा जाता है बड़े आदमी। हाँ भाई, उनका पद पोजीशन है, धन दौलत खूब है, मिल फैक्ट्रियां हैं, बड़ों बड़ों के साथ उनका उठना बैठना है, तो बाबा तो दुनिया में कहते हैं भाई बहुत बड़ा आदमी है। लेकिन बाबा की डिक्शनरी में जीरो, बाबा की डिक्शनरी में बड़े आदमी कौन है, बच्चे। लेकिन हम बच्चों में भी कौन, तो अगर हम बाबा के तो बन गए, बड़े तो बन गए, लेकिन यदि हम अपना समय श्वास संकल्प व्यर्थ गंवा रहे हों, तेरे मेरे में हों, इधर उधर की बातें करते हों, तो बड़े आदमी तो नहीं। बड़े आदमी माना जो बड़ा कर्तव्य करे, जिनके संकल्प महान हो, जिनके बोल महान हो, जिनके कर्म महान हो। हाँ, कर्म से बड़ा व्यक्ति बनता है ना। हाँ, जिसका दिल बड़ा हो। बहुत अच्छी बात बताई, दिल की बात कही तो मुझे एक सीन याद आया कि एक बार बड़ी दादी बाप दादा के सामने बैठी हुई थी, और बाप दादा ने बड़े प्यार से कहा तुम्हारी दिल बड़ी है ना। तो फिर बाबा ने दूसरी बार फिर वही बात, तुम्हारी दिल बड़ी है ना, तो दादी कहती हाँ बड़ा बाबा है तो बड़ी दिल भी है। जहाँ बड़ा बाबा बैठा है, बड़ा परिवार बैठा है, तो बड़ी दिल तो होगी। बहुत सुंदर रूढ़िहान। तो हम बड़े आदमी हैं, है ना। तो ऐसे रोज एक पॉइंट लेकर के इसके ऊपर चिंतन हम जरूर करें। बड़े आदमी अर्थात जो है ना, बाबा की डिक्शनरी में जो संपूर्ण आत्म अभिमानी है, जो संपूर्ण पवित्र है, जो व्यर्थ से पूरी तरह से मुक्त है, जो चरित्रवान है, जिनके संस्कार महान है, वही वास्तव में बड़े हैं। नहीं तो हम देखें, अपने अपने आप को चेक करें, सारे दिन की दिनचर्या देखें, जो बाबा ने टाइटल दिया क्या उस अनुरूप हम रहते हैं। हम बड़े आदमी बनकर के सारा दिन रहते हैं, बड़े ते बड़े बाप के बच्चे हम बड़े। अच्छा, और प्रश्न में क्या कहा, कौन सा हुनर यहाँ का सतयुग में स्थापना के कार्य में आएगा, कौन सा हुनर? साइंस, साइंस का हुनर। मकान आदि बनाते हैं, एरोप्लेन, है ना। तो बाबा ने कहा ये सब हुनर सतयुग में आएगा, भल ज्ञान ना ले लेकिन संस्कार जाएगा। और बाबा हमें क्या बता रहे हैं अभी, सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान, आदि से लेकर अंत तक। बाबा ने कहा इस कलयुगी दुनिया में तुम्हारी बुद्धि नहीं जानी चाहिए। कलयुगी दुनिया में हमारी बुद्धि ना जाए, बाबा कहते हैं कि अंत समय यही पेपर आएगा। अंत में एक बाबा के सिवाय कुछ भी याद ना आए, और कुछ याद आया तो, कुछ याद आया तो क्या हो जाएगा, फेल, है ना। इसके लिए कोई, अब इसमें कोई व्यक्ति की बात नहीं, चलो हमारी बुद्धि सबसे हट गई है, देहधारी संबंध, हम देह की बात नहीं, संबंधी की बात नहीं है। चाहे कोई छोटी सी चीज में, खाने पीने की चीज में, पहनने की चीज में, है ना, धन में, गहने, किसी भी चीज में, छोटी सी छोटी चीज में भी यदि हमारी बुद्धि गई तो बाबा से हमारा बुद्धि योग तोड़ दिया ना। यहां तक कि कल बाबा ने कह दिया, टीचर बहनों से मुलाकात में बाबा ने क्या कहा कि अगर योग में हमें सेवा भी याद आती है तो भी ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? बाबा ने कहा सेवा तो अच्छी चीज है, कोई खराब संकल्प थोड़ी है, लेकिन फिर भी बाबा ने कहा ठीक नहीं। क्यों ठीक नहीं है? क्यों ठीक नहीं है? योग टूट गया। अच्छा, लेकिन कोई खराब संकल्प तो नहीं है, अगर सेवा तो अच्छी चीज है, वो याद आ गया तो क्या? बाबा ने कितने, उसी घड़ी अंतिम घड़ी आ जाए तो फिर क्या होगा। बाबा ने कितनी सुंदर बात बताई, सेवा याद आई, माने कंट्रोलिंग पावर तो नहीं रही ना, आपका अपने ऊपर कंट्रोल तो नहीं रहा ना, बाबा से बुद्धि योग टूटा ना। तो जिस घड़ी, जिस समय हम जो कर रहे हैं वही याद आवे, तो जब बाबा की याद में बैठे, बाबा ने कहा, टीचर्स बहनों क्या बोला, कि सेवा के लिए समर्पित हो या बुद्धि से भी समर्पित हो, बुद्धि को जहां चाहे, जब चाहे, जैसा चाहे। तो कहने का भाव ये कि हमारे अंत समय बाबा के सिवाय कुछ, हम देखें ऐसा अभ्यास है और किसी चीज में हमारी बुद्धि जाती है तो वो चीज हम अपने सामने लाएं और अपने आप को समझाएं, ऐ आत्मा इस चीज में तुम्हारी बुद्धि जा रही है तो याद कर लो, यही अंत समय याद आएगा और तुम धोखा खा जाएंगे, यही तुम्हें अंत में फेल करेगा। इसलिए अभी से संभल जाओ, अभी से अपने अपनी बुद्धि का किनारा कर लो। कोई भी बात है ना, सबसे अच्छा टीचर कौन होता है? हम खुद होते हैं। कोई कितना भी समझाए, अगर हमारे अंदर कोई वीकनेस है, कमी है, कोई कितना भी समझाए, हमें थोड़ा अहम आ सकता है, अरे हमें सब पता है। लेकिन यदि हम खुद के टीचर बन करके खुद को समझाते हैं तो अपने आप को हम परिवर्तन कर लेते हैं। तो बहुत जरूरी है, जैसे हम योग करते हैं तो सुख मिलता है, ऐसे एकांत में बैठ करके अपने आप से बातें करें, स्वचिंतन करें, और जब हम स्वचिंतन करते हैं, स्वदर्शन करते हैं, तो स्वपरिवर्तन करना सहज हो जाता है। फिर आगे बाबा ने क्या कहा, बाबा तुम्हारा कौन कौन है? बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है। नहीं नहीं नहीं, आज कुछ और बोला। तीसरी बात क्या बोला? क्या वो क्या गाइड? और बताइए, बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, और तीसरा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप, चैतन्य बीज रूप है। जिस कारण हमें वो कौन सा ज्ञान देते हैं? हाँ, सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान देते हैं। अच्छा, बाबा बीज रूप है तो हम क्या हैं? बाबा क्या बोलता है कि आपको क्या बोलता है? आप जो ये कल्प वृक्ष के आप क्या हैं? हाँ, चैतन्य जड़े हैं, और बाकी सब हाँ टाल टालियां। अब आप सोचिए, बाबा कई बार कहते बच्चे तुम कल्प वृक्ष के चैतन्य जड़े हो, यदि जड़े सूख गया तो वृक्ष का क्या हाल होगा? हाँ? पूरा वृक्ष सूख जाएगा। आपके आधार पर सारा वृक्ष खड़ा हुआ है। हमारी उतरती कला तो सारे सारे आत्माओं की उतरती कला, हम सतो प्रधान तो सारा विश्व सतो प्रधान, हमारी चढ़ती कला तो सारे विश्व की चढ़ती कला है ना। हमारे एक एक संकल्प का प्रभाव सारे विश्व की आत्माओं के ऊपर पड़ता है। हम निगेटिव संकल्प चला रहे हैं तो केवल हम अपना अकल्याण नहीं कर रहे हैं, लेकिन हम कल्प वृक्ष की चैतन्य जड़े होने के कारण, सारे मनुष्य आत्माओं के पूर्वज होने के कारण सारे मनुष्य आत्माओं का अकल्याण कर रहे हैं। इतनी बड़ी जवाबदारी है। और बाबा भी बीज भी अगर सारे वृक्ष को सकास देना चाहे, शक्ति देना चाहे, तो किसके माध्यम से देगा? हमारे माध्यम से देगा। तो बाबा ने कहा कल की अव्यक्त मुरली में ना, कि इतने बड़े ठेकेदार, इतने बड़ी जिम्मेवारी है, इतना नशा रहता है, इतनी स्मृति रहती है, तो हमारे एक एक संकल्प का, बोल का, कर्म का सारे विश्व के आत्माओं के ऊपर प्रभाव पड़ता है। तो बड़े आदमी, पूर्वज आदमी, कल्प वृक्ष के चैतन्य जड़े, ये स्मृति में रहे। और आगे बाबा ने क्या कहा? क्या कहा बाबा ने? तुम जब तक जीना है तब तक पढ़ना है। तुम्हें कौन सी खुशी रहनी चाहिए? हाँ, हमें पढ़ाने वाला स्वयं भगवान है। तो भगवान पढ़ाने वाला है तो स्टूडेंट कैसे होंगे? जिस स्टूडेंट को स्वयं भगवान पढ़ावे, स्टूडेंट कैसे होंगे? हाँ, फर्स्ट क्लास होंगे ना, कमजोर तो नहीं होंगे ना, फेल होने वाले तो नहीं होंगे ना, या कभी आए कभी नहीं, लेट आने वाले तो नहीं होंगे ना, फर्स्ट क्लास। तो अब इसके ऊपर चिंतन करना, हमें भगवान पढ़ाते हैं तो हमें कैसे क्या निशानी दिखाई पड़नी चाहिए? अच्छी रीति पढ़ना माना, पहले दिन मैंने इसके ऊपर बताया था, अच्छी रीति पढ़ना माना क्या है ना, इसके ऊपर चिंतन करना। अच्छा, और आगे याद से अपने आप को क्या बनाना है? कर्मातीत, सतो प्रधान। बाबा ने कहा कर्मातीत बनने का पुरुषार्थ करना है। याद से अपने आप को सतो, ये विनाश का, विनाश के पहले क्या करना? अपने आप को कर्मातीत बनाना। कर्मातीत अर्थात कर्म के प्रभाव से मुक्त, कर्म बंधन से मुक्त, कर्म इंद्रियों के आकर्षण से मुक्त। और तो एक बार तो बाबा ने कहा कर्मातीत अर्थात मुर्दा। मतलब कोई भी उसके ऊपर किसी भी चीज का प्रभाव नहीं पड़ सकता है। शरीर का आधार लिया, कर्म किया और न्यारे हो गया। कोई भी कर्म इंद्रियां उसे आकर्षित नहीं करेगी, खींचेगी नहीं। अच्छा, और बाबा ने क्या कहा तूने? अच्छा, रात गवाई सोके, दिवस बहुत सुंदर। अच्छा, और फिर बाबा ने कहा विचार सागर, वही बात धारणा सार में कि अच्छी रीति पढ़ना है, विचार सागर मंथन करना है। वरदान में बाबा ने क्या कहा? वरदान, अब उस नशे के साथ 500 लोगों के बीच में बाबा ने हमें इतना ऊंचा वरदान दिया, भूलना नहीं है। कौन सा वरदान दिया? आत्म अभिमानी भाव, कौन बनेंगे आत्म अभिमानी? उसके लिए बाबा ने क्या बताया? हाँ, निर्विकारी व फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करने वाले आत्म अभिमानी भाव, जो आत्म अभिमानी स्थिति में रहते हैं उनके मनसा में भी विकार का अंश नहीं आ सकता, किसी भी विकार का अंश नहीं आ सकता। और जिनके मनसा भी संपूर्ण निर्विकारी है वही वास्तव में क्या है? फरिश्ता है, है ना? तो हम फरिश्ता है। आज सारा दिन क्या बन करके रहना है? फरिश्ता। मुरली से एक पॉइंट लेकर के और सारा दिन धुन लगा दो। आज बाबा ने कहा है फरिश्ता, अर्थात जिसका जिसके मनसा में भी कोई विकार का अंश ना आवे। फरिश्ते को क्या दिखाते हैं? लाइट, हल्का, कोई बोझ नहीं। फरिश्ता माना संपूर्ण पवित्र, फरिश्ता माना सर्व का सहयोगी, फरिश्ता माना हल्का उड़ने वाला, फरिश्ता माना अनासक्त, कहीं बुद्धि जाने वाला नहीं। तो हम ऐसे फरिश्ते हैं, उमंग उत्साह में रहने वाले फरिश्ते। जहां भी जिसको भी सहयोग की जरूरत हुई, फरिश्ता पहुंचा, मदद किया और वहां से उड़ा। ऐसे नहीं कि हमने सेवा किया तो लोग हमारी थोड़े हमारा फोटो भी खींच ले, हमें लोग जाने, हमारी महिमा हो जाए। नहीं, उसका काम है मदद करना और उड़ जाना। तो हाँ, 5 तत्वों के आकर्षण से भी परे रहेगा, कर्मेंद्रियों के आकर्षण से भी परे रहेगा। और ऐसे स्वराज्य अधिकारी आत्मा ही विश्व राज्य अधिकारी बनते हैं। तो हम ऐसे फरिश्ता बने। हाँ हाँ, वो सदा उड़ते हुए, फर्श नहीं लेकिन अर्श। अच्छा, तो रोज श्रीमत पर, बहुत सुंदर। हाँ जी हाँ जी, तो ऐसे रोज की मुरली से एक बात लेकर के सारा दिन उसको हमें अभ्यास में लाना है। तो आज होमवर्क मिल गया कि सारा दिन फरिश्ते बनकर के चलो। तो मैं आत्मा लाइट के शरीर में, मुझसे चारों ओर प्योर वाइब्रेशंस फैल रहे हैं। या ऐसे अनुभव करो कि बाबा हमारे सिर के ऊपर छत्र छाया है, ज्ञान सूर्य शिव बाबा की छत्र छाया, निरंतर उसकी सकास हमारे ऊपर पड़ रही है। चल रहे हैं, उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बैठे हुए हैं, भोजन कर रहे हैं, लेकिन डबल लाइट बनकर के बाबा की छत्र छाया में। बाबा को अच्छा नहीं लगता कि मेरे बच्चे और बोझिल, मेरे बच्चे उदास, मेरे बच्चे परेशान, अच्छा लगता है उसको? तो क्या चाहता है बाबा? कि मेरे बच्चे कैसे रहें? हल्के रहें, डबल लाइट रहें, उड़ते रहें और सबको उड़ाते रहें। कोई भी बोझ है तो क्या करो? बाबा को दे दो। बाबा कहते मैं 1000 भुजा वाला हूँ, सारे बोझ मुझे दे दो, हल्के रहो। कौन ज्यादा बोझ उठाएगा, 2 भुजा वाला मनुष्य या 1000 भुजा वाला भगवान? तो बाबा ने कहा फिर 2 भुजा वाले की तरफ क्यों देखते हो? क्यों नहीं मेरे तरफ देखते? है ना, कोई समस्या बातें आ जाती तो हम क्या करते हैं? 2 भुजा वाले की तरफ, वो 1000 भुजा वाला इंतजार ही करता रह जाता है कि कब ये। फिर बाबा कई बार इस बच्चे के लिए मैं क्या करूं, मैं 1000 भुजा वाला बैठा हूं, ये 2 भुजा वाले के पास जाता है। बाबा को भी बड़ा रहम आता है देख करके। अच्छा अब बताओ, हमारा कोई मित्र होगा, वो 2 भुजा वाले के पास चारों तरफ से घूम करके हमारे पास आवे तो हम क्या कहेंगे? अब आ गए मेरे पास, कहीं नहीं मदद मिला ना। लेकिन भगवान ही नहीं सोचता, वो खुश होता है, मदद करता है। तो हमें 1000 भुजा वाले को सदा साथी बना के रखना है। अच्छा स्लोगन, जीवन में अतींद्रिय सुख का अनुभव करना है तो अमृत वेले एकांत प्रिय बनो। एकांत प्रिय बनने का मतलब, हाँ, मन बुद्धि एक बाबा में लगे। ऐसे नहीं कि हम बाबा ने एकांत में कहा है तो हम अकेले जाके बैठ जाएं। मन बुद्धि, मन बुद्धि एक की लगन में मगन रहे, अमृत वेले योग का संपूर्ण सुख लें, उससे बातें करें। 16-11-95 की अव्यक्त मुरली पढ़ लीजिएगा, 16-11-95। अगर अमृत वेला कोई नहीं उठ पाता, नींद आती है, उबासी आती है, उठ नहीं पाते हैं या नींद खुलती नहीं है, कोई भी समस्या है, उसमें आपको बाबा ने बहुत सुंदर विधि बताई है। और एक शब्दों में मैं बता दूं तो बाबा ने ये कहा कि जब रात में सोने जाते हो तो कमरे में बिस्तर पर बैठ करके कभी संसार समाचार की लेन देन नहीं करना, इधर उधर की बातें नहीं करना। या तो लो बातों का सुख या लो बाप का सुख। कौन सा सुख लेना है? बाप का सुख। बातें तो हम 2500 वर्ष से करते आए। तो जब सोने जाते हैं, और यहां तक बाबा ने कहा कि कई बच्चे कहते हैं हम सेवा के बारे में बातें करते हैं, तो बाबा ने कहा सेवा के बारे में भी बातें करना है तो कमरे से उठ करके, बिस्तर से उठकर बाहर जाकर बातें करो। जब आप सोने जाते हैं तो सोने के समय केवल और केवल हमें बाबा से बातें करनी है, सारे दिन का समाचार बाबा को सुनाना है, और अपने मन बुद्धि को पूरी तरह से खाली करके बाबा की याद की गोदी में सो जाना है, है ना? और आप जिस समय जितने बजे संकल्प करके सोएंगे उतने बजे ही आपकी नींद खुल जाएगी। और अगर आपने ये संकल्प किया आज सारा दिन हम तो बहुत बिजी रहे, कल तो अमृत वेला नहीं उठ पाएंगे, तो आप नहीं उठ पाएंगे। और अगर ये संकल्प किया कितना भी बिजी रहे, भले सोने को नहीं मिला, लेकिन अमृत वेला प्रभु मिलन का वेला है, उस समय हमें उठना ही है, तो आप अवश्य उठ जाएंगे। और उठते क्या करना? बाबा से गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग करेंगे तो क्या होगा? बाबा आपको वरदान देंगे, शक्ति देंगे। हाँ, माताओं को अनुभव ना, आपका बच्चा उठ आपको गुड मॉर्निंग करे, नमस्ते करे, प्रणाम करे, तो कुछ देंगे कि नहीं देंगे वरदान आशीर्वाद? तो भगवान से रोज ही आशीर्वाद लेते रहो, वरदान लेते रहो गुड मॉर्निंग करके, है ना? जैसे आंख खुले बाबा से गुड मॉर्निंग, और बाबा से जैसे अनुभव करो बाबा ने अपना वरदानी हाथ हमारे सिर के ऊपर रखा और वरदान दिया, बच्चे निर्विघ्न आत्मा भव, सफलता मूर्त आत्मा भव, विजयी रतन वरदान ले लो, रोज ही बाबा से वरदान लेते रहो, ठीक है ना? तो इस प्रकार से हम रोज मुरली, जो आज बाबा ने कहा, जो अच्छे विद्यार्थी होते हैं, अच्छे स्टूडेंट, वो रिवाइज करते हैं। तो एक बार तो सुना, लेकिन दूसरी बात रिवाइज करना बहुत 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 जरूरी है, उसका मंथन चिंतन करना बहुत जरूरी है। और जब मंथन चिंतन करते हैं तो वो हमारा अपना खजाना बन जाता है, और वही चीज हमें समय पर काम आता है, फिर ज्ञान सुनाने की भी इच्छा करेगी और योग बहुत सहज हो जाता है, ठीक है? ओम शांति।